ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सार्वभौम गृहे भुञ्जन्
जन
सार्वभौम गृहे भुञ्जन्
सार्वभौम गृहे भुञ्जन्
स्वनिन्दकम् अमोघकम् अङ्गीकुर्वन् स्फुटम् चक्रे गौरः स्वाम् भक्तवश्यताम्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ प्रसाद पाने गए। बड़े आदर से बहुत आग्रह से सार्वभौम जी ने बुलाया था, तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करने बैठे तो उसी समय अमोघ जो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था वो चैतन्य महाप्रभु को गाली देना चालू किया, निंदा करना चालू किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को भी कहने लगा कि ये सारा धन लुटा रहा है, साधुओं को दे रहा है, खिला रहा है। और चैतन्य महाप्रभु को कहने लगा इन लोगों का कोई काम नहीं है, बस नाचोगा और आकर के इतना खाओ, बाप री बाप। बहुत परसा था, उन्होंने बहुत आइटम बनाया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो सोचता था कि वास्तव में वो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था और उनको कोई पुत्र नहीं था सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो सोचता था कि इसका सारा धन मेरा होगा, ये तो पहले ही सारे साधुओं को खवा रहा है, लुटा रहा है, तो खूब निंदा करने लगा सामने। लेकिन बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा करके उसका अपराध क्षमा करके उसे वैष्णव बना दिया। ये कथा इसमें आएगी। तो सार्वभौम गृहे भुञ्जन् स्वनिन्दकम् अमोघकम् अङ्गीकुर्वन् स्फुटान् चक्रे गौरः स्वाम् भक्तवश्यताम्। इस लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया, दिखा दिया कि कैसे भक्तवश्यता को प्राप्त हैं, भक्तों के वश में हैं। अपने निंदक अमोघ को अपना लिया उन्होंने। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण चैतन्य चरितामृत जार प्राणधन। चैतन्य चरितामृत को सुनने वाले श्रोताओं की जय हो। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नीलाचल में रह करके नृत्य गीत नाच गान में लगे रहते हैं। तो प्रथमावसरे जगन्नाथ दर्शन नृत्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। सबसे पहले सवेरे तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और वहां भी नृत्य गीत करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। घरे बसी करे प्रभु नाम संकीर्तन अद्वैत आशिया करे प्रभु र पूजन। एक दिन की बात है, अच्छा प्रतिदिन वो घर पर आकर के नाम संख्या संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते थे, नाचते थे, गाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। एक दिन की बात है, उपल भोग लागिले करे बाहिरे विजय हरिदास मिली ऐसे अपन निलय। मंदिर में जाने के बाद महाप्रभु उपल भोग के समय मंदिर के बाहर रहते थे, तब वे हरिदास से मिलने जाते और फिर अपने निवास स्थान पर लौट आते। प्रतिदिन हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु मिलते थे, यदि हरिदास ठाकुर को मंदिर में प्रवेश के लिए निषेध था, वो नहीं जा सकते थे, अतः स्वयं जगन्नाथ जी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके कुटिया पर जाते थे। वो स्थान आज भी है सिद्ध बकुल, जहां चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते थे, और उनसे मिलने के बाद तब अपने घर जाते थे, काशी मिश्र के घर। घरे बसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैतया सिया करे प्रभु र पूजन। तो काशी मिश्र जी के घर पर चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे, अद्वैतया सिया करे प्रभु र पूजन, और अद्वैताचार्य आकर वहां पर चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे एकांत में। सुगंधि सलीले देन पाद्य आचमन, सर्वांगे लेपये प्रभुर सुगंधि चंदन। वहां आकर के सुगंधित जल से पाद्य जल अर्पित करते थे, आचमन करने के लिए पानी देते थे पीने के लिए, चरण धोते थे। सर्वांगे लेपये प्रभुर सुगंधि चंदन, और सभी शरीरों में ऊर्ध्व अंगों में अत्यंत सुगंधित चंदन का लेप करते थे। दधि दुग्ध भार सवे नील, गले माला देन माथे तुलसी मंजरी, जोड़ हाथे स्तुति करे पदे नमस्कारी। और गले में माला पहनाते थे, माथे पर तुलसी मंजरी रखते थे, हाथ जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते थे। पूजा पात्र पुष्प तुलसी शेष जे अछिला, सही सब लैया प्रभु आचार्य पूजिला। जो पूजा की सामग्री से अद्वैताचार्य भगवान की पूजा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, तो पूजा के पात्र में पुष्प और तुलसी बचा हुआ लेकर चैतन्य महाप्रभु आचार्य की पूजा करने लगे करते थे। सही सब लैया प्रभु आचार्य पूजिला, जोशी सोशी नमस्तुते, यही मंत्र पढ़े। जोशी योशी सोशी नमस्तुते, यही मंत्र पढ़े, मुखवाद्य करी प्रभु हासाए आचार्य। हासाए आचार्य मुख, आप जो भी हैं, यो योशी सो असी, आप जो है सो है, अब जो भी हैं, मैं आपकी आपको प्रणाम करता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अब जो भी यही मंत्र पढ़े, मुखवाद्य करी प्रभु हासाय आचार्य। मुखवाद्य करके मुख से कभी कभी ताल देते हैं ना, स्तुति पढ़ते हैं, जैसे ढोलक बजता है हारमोनियम बजते हैं, ऐसे कभी कभी मुख बजता है। तो मुखवाद्य करी प्रभु हासाय आचार्य, आचार्य को हंसा रहे थे। यही मत अन्य करे नमस्कार, प्रभु रे निमंत्रण करे आचार्य बार बार। इस प्रकार दोनों दोनों का नमस्कार कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में दोनों ईश्वर हैं। अद्वैताचार्य नमस्कार करते थे, फिर वे नमस्कार करते थे अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो जब तक नीलाचल में अद्वैत आचार्य रहते थे, तो बार बार चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे भिक्षा के लिए, प्रसाद के लिए। नवदीप से जो भक्त आते थे वहां पर रथ यात्रा के अवसर पर, रथ यात्रा से कुछ दिन पहले आते थे और चार महीना पक्का रहते थे। कार्तिक में उत्थान एकादशी के बाद उत्थान द्वादशी के दिन धीरे धीरे जाने लगते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के भेजने से। चैतन्य महाप्रभु के संग लोभ से वे लोग जल्दी घर नहीं जाते थे, चार महीना पक्का रुक जाते थे। और उसमें जो जन्माष्टमी आदि जो उत्सव होते थे, तो उसमें खूब खुलकर भाग लेते थे। जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु उनको विदा करते थे तब जाते थे, इतना अनुराग था भगवान चैतन्य महाप्रभु से, जगन्नाथ जी से उनका, रुकते थे चार महीना। आचार्य र निमंत्रण आश्चर्य कथन, विस्तारी वर्ण्याचन दास वृंदावन, विस्तारी वर्ण्याचन दास वृंदावन। अद्वैत आचार्य का निमंत्रण और उनका प्रसाद परोसना चैतन्य महाप्रभु को, ये बहुत आश्चर्य की कथा है और इसका विस्तार से वृंदावन दास ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत में। पुनरुक्ति है तहा न कह लू वर्णन, अब मैं वर्णन करूंगा तो पुनरुक्ति होगी इसलिए नहीं कर रहा हूं। आर भक्त गौण करे प्रभु रे निमंत्रण, और भी भक्त करते थे। एक एक दिन एक एक भक्त गृह महोत्सव, प्रभु संगे तहां भोजन करे भक्त सब। वो चार महीना महोत्सव ही चलता था, प्रतिदिन किसी न किसी भक्त के यहां निमंत्रण रहता था और चैतन्य महाप्रभु के साथ सब भक्त भोजन करने जाते थे। प्रतिदिन महोत्सव ही चलता था, एक एक दिन एक एक भक्त गृह महोत्सव, प्रभु संगे तहा भोजन करे भक्त सब। चारि मास रहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथ नाना यात्रा देखे महारंगे। चार महीना महाप्रभु के साथ लोग रहे और बीच बीच में जगन्नाथ जी की जो भी यात्रा महोत्सव होता था सब देखते थे। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। कृष्ण जन्म यात्रा मतलब नंदोत्सव के दिन चैतन्य महाप्रभु गोप वेश धारण किए, तो असली गोप हैं ही। गोप वेश धारण, कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोप वेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। दधि दुग्ध भार सबे निज स्कंधे करी, महोत्सव स्थाने आईला बलि हरि हरि। तो गोप वेश और सब किए थे और भक्त भी और चैतन्य महाप्रभु भी, तो स्कंध पर दही दूध का भार ले ले करके आए, बहुत दूध दही जुटा था नंदोत्सव करने के लिए, तो आए और सब बोल रहे थे हरी 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 बोल, महोत्सव स्थाने आईला बलि हरी हरी। कानाई खुटिया छे नंद वेश धरी, जगन्नाथ महाती है छेन ब्रजेश्वरी। कानाई खुटिया ने नंद महाराज का वेश बनाया, किसी भक्त का नाम है, और जगन्नाथ महाती ने मां जसोदा का वेश बना लिया। नंद भी बने जसोदा भी बने, जैसे कल आप देखे ही थे लीला। तो अपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभम आर परीक्षा पात्र तुलसी, यहां सबा लैया प्रभु करे नृत्य बंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर काशी मिश्र सार्वभम भट्टाचार्य तथा तुलसी परीक्षा पात्र समेत राजा प्रताप रुद्र भी उपस्थित थे उस स्थान पर। तो सबको वहां लेकर चैतन्य महाप्रभु खूब नाचने लगे, सारे लोग दूध दही तथा हल्दी के पीले जल से सराबोर हो गए, दधिकादो हुआ। यहां सवार लैया प्रभु करे नृत्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्रा जले भरे सवार अंग। खूब नाचते थे गाते थे और सबके ऊपर दही और हल्दी घोरा हुआ, हल्दी गिराया जाता था, दही हल्दी का मतलब हल्दी घोर करके जल में सबके ऊपर और दही, तो दही इतना बह रहा था कि दधिकादो हो गया, दही का करदम हो गया। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी है कोप, लगुड़ फिराते पर तबे जानी गोप। तो चेतन महाप्रभु जब गोप बने थे गाय चराने वाले, कृष्ण नहीं, कृष्ण तो अभी जन्म लिए थे ना, गोप बने हैं। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि आप गुस्सा मत कीजिएगा, एक बात मैं कहता हूं, अगर जो आप लगुड़ लिए हैं लाठी गाय चराने का छोटा लाठी, इसको आप जब घुमाएंगे ढंग से तब जानेंगे कि आप गोप हैं। गोप लोग बहुत अच्छी प्रकार से लगुड घुमाते हैं, लगुड फिराते पारो तबे जानी गोप, तभी मैं गोप जानूंगा। तबे लगुड लैया प्रभु फिराई ते लगीला, बार बार आकाशे फैली लुफिया धरीला। तो लाठी को उस लगुट को चैतन्य महाप्रभु घुमाने लगे कई प्रकार से और आकाश में फेंक कर उसको पकड़ लेते थे। लुपिया मैंने वो फान करके आकाश में उसको पकड़ लेते थे, कई तरह से घुमाते, ऐसे 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 ऐसे, फिर पीठ पर इधर उधर इधर लगे घुमाने, बहुत बड़ा नृत्य हुआ। सिरे रहो ऊपर पृष्ठ सम्मुखे दुई पासे, सिर के ऊपर फिराते थे, पीठ पर फिराते थे, सम्मुखे दुई पासे, पाद मध्य फिराए लगू और पैर के बीच में भी ऐसे फैलाते। देखी लोग हंस, सब लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। अलात चक्र प्राय लगुड़ा फिराए, अलात चक्र की तरह लगुड़ फिरा रहे थे। देखी सर्व सर्वलोक चित चमत्कार पाए, यही मत नित्यानंद फिराए लगुड़। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु लाठी भांज रहे थे तो नित्यानंद प्रभु भी वही करने लगे। के बुझीते के बुझी बेतहा दुहर गोप भाव गुड़, कौन जानेगा उन वास्तव में ये दोनों गोप ही हैं, इनका गोप भाव है तो गुड़ गोप भाव आज प्रकट हो रहा है, परंतु दूसरे लोग नहीं जानते थे कि ये वास्तव में दोनों गोप हैं, ओरिजिनल कृष्ण बलराम। प्रताप रुद्रेर आज्ञा परीक्षा तुलसी, जगन्नाथ प्रसाद वस्त्र एक लय आसीन। तो महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा से बहुमूल्य वस्त्र महाप्रभु के सिर पर लपेट दिया गया और अद्वैताचार्य आदि भक्तों ने भी अपने महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा पाकर मंदिर का निरीक्षक तुलसी भगवान जगन्नाथ के उतरे वस्त्र को लाया, जो उसका नाम ही था तुलसी, तुलसी पंडा प्रधान, तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे वे लाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए वस्त्र लाए, बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तक पे बांधिला, बहुमूल्य वस्त्र को चैतन्य महाप्रभु मस्तक पर बांधे, पगड़ी बांधे। आचार्य आदि प्रभु रे गोपेर पर आईला और अद्वैत आचार्य आदि भक्तों ने भी अपने सिर पर इसी तरह की पगड़ी बांध। कनाई खुटिया जगन्नाथ दुई जन, आवे से बिलाईला घरे छिला जत धन। तो कनाई खुटिया और जगन्नाथ किसी का नाम था, ये दो जन बहुत धनी थे जगन्नाथपुरी में, घर में इनका जितना धन था सब लुटाने लगे उस नंदोत्सव में, केवल खिलौना आदि नहीं लुटा रहे थे, वास्तव में रत्न लुटाने लगे और उनके घर में जितना धन था कहते आवेश से बिलाईला घरे छिला जत धन, आवेश में सब बिलवाने लगे, बिलाने वाले लुटाने लगे जितना धन था। देखी महाप्रभु बड़े संतोष पाईला, माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कैला। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनको देख करके और उन दोनों को माता और पिता समझ करके नमस्कार किए चैतन्य महाप्रभु। परमायावेश प्रभु आईला निज घर, यही मत लीला करे गौरांग सुंदर। इस तरह लीला करते थे। एक बार की बात है, विजया दशमी लंका विजय रे दिने, बानर सैन कैला प्रभु लैया भक्त गणे। विजया दशमी के दिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर के उनको कहे कि आज लंका पर चढ़ाई करना है। आज विजया दशमी का दिन है तो सारे भक्त अब बानर के भाव में आ गए, पोशाक नहीं पहने, ऐसे ही भाव में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के भाव में, बानर सैन्य कैला प्रभु लैया भक्त गढ़े, हनुमान आवेश प्रभु वृक्ष शाखा लैया लंका गढ़े चढ़ी फैले गढ़ भंगाइया। तो चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के आवेश में एक वृक्ष ले करके और लंका के गढ़ को भांग ढाह दिए, लंका का किला था, मतलब ऐसा ड्रामा कर रहे थे। कहा रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेश, अरे रावणा अरे मार करके बोल रहे, अरे दुष्ट रावणा कहाँ हो तुम, कहा रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेश, जगन माता हरे पापी मारी मु सब वंश है। जगन माता सीता जी का हरण किया है तुमने, तुमको मैं वंश के साथ मार दूंगा। गोसाई रावेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय बोले बार बार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी के आवेश में आकर लंका पर चढ़ाई की विजयादशमी के दिन। आज भी विजयादशमी होता है, कम से कम लंका को तो जलाने की लीला होती ही है, सब जगह रावण को जलाया जाता है, सब जगह। कुछ लोग रंज होते हैं कि रावण को क्यों जला रहे, वो बहुत बड़ा गुंडा बदमाश था, उसको जला करके शिक्षा दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर इस प्रकार हमला करे या उसको चुरा किडनैप करे तो उसका वध कर देना चाहिए, इतना बड़ा पापी। रावण को बार बार समझाया गया कि सीता को लौटा दो लौटा दो, लेकिन नहीं लौटा, अंत में मारा गया। तो उस खुशी में आज भी लोग रावण को जहां तहां जला जला करके दिखाते। यही मत रास यात्रा आर दीपावली उत्थान द्वादशी यात्रा देखिला सकल सकली। इस प्रकार रास यात्रा अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में रास यात्रा भी होती थी, दीपावली, दीपावली के बाद उत्थान द्वादशी, द्वादशी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो यात्रा होती थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्तों ने सब देखा। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद लैया दुई भाई जुक्ति कैल निभृते बसिया। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर एकांत में बैठे, कुछ जुक्ति कर रहे थे, परामर्श कर रहे थे। किवा जुक्ति कैले दुहे के है नहीं जाने, क्या वे आपस में जुक्ति कर रहे हैं कोई नहीं जाना। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी नहीं जान पाए मतलब क्या वो लोग बोल रहे, इतना ही वर्णन है कि वो दोनों एकांत में बैठे परामर्श कर रहे। किवा जुक्ति कैल दुहे के नहीं जाने, फले अनुमान पाछे कैला भक्तगण। उस गोष्ठी के नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गोष्ठी से भक्तों ने बाद में फल द्वारा अनुमान किया, गोष्ठी के बाद जो फल हुआ अर्थात जो काम चालू हुआ तो उससे कुछ भक्तों ने अनुमान किया कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जीने के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि आप जहां रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप जाइए गौड़ में और जगह भक्ति का प्रचार करना है, प्रेम दान देना है, मैं तो सन्यासी हूं नहीं जा सकता गांव पर ऐसे ऐसे, तो आपको जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। और भी सारी बातें आप लोग किए, बाद में जो काम किए गए उससे पता चल गया। तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइला गौड़ देश से जहां सब विदाय करिला। तब महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाए और उन्होंने कहा कि गौड़ देश से जहां आप सभी बंगाल में जाइए और सबको विदा करने लगे। सवारे कहिला प्रभु प्रत्यब्ध आसिया गुंडीचा देखिया जावे हमारे मिलिया। भगवान ने कहा कि सब लोगों से निवेदन है आप सभी हरेक वर्ष आना, प्रत्येक वर्ष आना, यहां चार महीने रहने की अनुमति हुई। गुंडीचा मार्जन भी देखना, इसका मतलब कि रथ यात्रा से कुछ दिन पहले आना। गुंडीचा देखिया जावे हमारे मिलिए, हमसे मिल करके जाइएगा, तो हर एक साल आइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि चार महीना ठहरिएगा, लेकिन हर एक साल आइए। आचार्य आज्ञा दिल करिया सम्मान आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियोदान। और अद्वैत आचार्य का सम्मान करके उन्होंने भक्तों के सामने कहा कि आप जाइए और चंडाल पर्यंत सबको कृष्ण भक्ति का दान दीजिए, कृष्ण भक्ति का दान दीजिए सबको, भेदभाव न करके सब पर कृपा कीजिए। नित्यानंद आज्ञा दिल जाह गौड़ देशे अनर्गल प्रेम भक्ति करी है अप्रकाशे। और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप जाइए गौड़ देश में और वहां पर अनर्गल प्रेम भक्ति का दान दीजिए। अनर्गल का अर्थ है बंधन से बाहर, अर्गला का अर्थ होता है बंधन, बंधन से बाहर था जिसको देखिए नीच हो उच्च हो धनी हो गरीब हो मूर्ख हो विद्वान हो सबको प्रेम भक्ति दीजिए। रामदास गदाधर आदि जप्त जने कत जने तुम्हारे सहाय लगी दिनु तुम्हारे सने। और आपके साथ मैं दे रहा हूं कुछ लोगों को, रामदास गदाधर आदि आपके साथ रहेंगे, आप सब जगह प्रेम भक्ति का प्रचार कीजिए कीर्तन गागा कर। मध्य मध्य आमी तुम्हारे निकटे आईब अलक्षित रही तो मैं नृत्य देखी बा, मैं बीच बीच में आपके पास आता रहूंगा। भक्तों के सामने कह रहे हैं, भगवान कभी कभी अपनी भगवत्ता को प्रकट करते थे, भूल जाते थे कि मैं भक्त के रूप में आया। मध्य मध्य अमी तुम्हार निकट जाई, बीच बीच में मैं आपके पास जाऊंगा, और अलक्षित ही रहकर कोई हमको देख नहीं पाएगा, मैं आपके नृत्य को देखता रहूंगा, अलक्षित आऊंगा। श्रीवासव पंडिते प्रभु करी आलिंगन, कंठ धारी कहे तारे मधुर वचन। श्रीवास पंडित जिनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु नवदीप में कीर्तन करते थे, उनका आलिंगन करके और उनका कंठ धर करके, बहुत निकट से ऐसा आलिंगन करके और उनसे कहने लगे। बहुत अंतरंग भक्त श्रीवास पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु के। तोमार घरे कीर्तने आमे नित्य नाचिब, आपके घर के कीर्तन में अभी भी मैं नित्य नाचूंगा आपके साथ, आपके कीर्तन में मैं अभी भी नाचता रहूंगा। तोमार घरे कीर्तन आमीन कीर्तने आमी नित्य नाचिब, तुम्ही देखा पाबे यार केहना देखिब, आप केवल हमको देखेंगे और कोई नहीं देख पाएगा। शायद एकांत में बात कर रहे होंगे, और कोई नहीं देख पाएगा, आप देखेंगे। तो मैं आपके कीर्तन में नित्य नाचता रहूंगा, आपके कीर्तन में नित्य रहूंगा, नित्य नाचिब, तुम्ही देखा पावे यार कहना देखिब, आप देखेंगे कोई नहीं देखेगा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने मां के लिए, सची के लिए, जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र देने लगे। यही वस्त्र माता के दीह, यही सब प्रसाद, दंडवत करी अमर क्षमा अपराध। ये जगन्नाथ जी का वस्त्र मेरे मां को दीजिएगा, और ये सब प्रसाद मैं भेज रहा हूं, सबसे जाकर के मेरे तरफ से मेरी मां को दंडवत प्रणाम करी अमर क्षमा अपराध। आप दंडवत प्रणाम कीजिएगा और मेरे अपराध की क्षमा, मेरे अपराध को क्षमा कराएगा। आप हमारी तरफ से मां से क्षमा मांगिएगा, मेरे अपराध को क्षमा कराइए। यही वस्त्र माता के दीह, यही सब प्रसाद, दंडवत करी अमार क्षमा अपराध। तार सेवा छाड़ी हमें करिया छे संन्यास, धर्म नहीं करी हमें निज धर्म नाश। हमारा वास्तविक धर्म यह था कि मेरी मां असहाय है, कोई उसका नहीं है। 8 बहने हुई थी चैतन्य महाप्रभु की, मर गई जन्म ले लेकर तुरंत। तो 8 बहने मर गई और बड़े भाई सन्यासी हो गए। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी सन्यास ले लिया, तो तार सेवा छाड़ी हमें करी अच्छे सन्यास, अपने मां की सेवा को छोड़ करके मैं सन्यास ले लिया। धर्म न है करी हमें निज धर्म नाश। वास्तव में यह धर्म नहीं था कि मैं सन्यास लूं, मेरा धर्म था कि मैं मां की सेवा करूं, लेकिन मैंने अपने धर्म का नाश कर दिया। तार प्रेम बस यामी, तार सेवा धर्म, ताहा छाड़ी करी अच्छी बातू ले कर। तार प्रेम, यद्यपि मैं उसके प्रेम के वश में हूं, मां का प्रेम सदा याद रहता है। तार सेवा धर्म, उसकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है मेरे जीवन का, लेकिन उसको छोड़ करके मैं पागल का काम कर रहा हूं, बातें ले कर। चेतन महाप्रभु हमेशा यही बात कहते थे कि मैं संन्यास लिया हूं तो मैं पागल हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कि मैं घर द्वार छोड़ करके, मां को छोड़ करके और बातुलेर कर्म करिए, बातुल का कर्म, पागल का काम कर रहा है। फिर कहते आप हमारे ओर से कहिएगा मां को कि बातुल बालकेर माता नहीं लय दोष, यही जानी माता मोरे ना करी है रोष। अगर कोई बच्चा पागल हो जाए तो मां उस पर कभी भी क्रोध नहीं करती है, उसमें दोष नहीं देखती है, बातुल बालकेर माता नाही लय दोष यही जानी माता मोरे ना करी है रोष हे माँ यही समझ करके मुझ पर क्रोध मत करो मैं पागल हो गया की कार्य संन्यास मोर प्रेम निज धन जे काले संन्यास कैलू छन्न है लमा क्या इस संन्यास में क्या दम है प्रेम ही मेरा अपना धन है मां की सेवा करना मां से स्नेह करना यही मेरा धन है जे काले संन्यास कैलू छन्न है लमा तब जब इतना समझते हो तो संन्यास क्यों लिए मान लीजिए श्रीवास जी पूछे कि मां अगर पूछेगी जब ऐसा समझ में आ रहा था तो संन्यास क्यों लिए जे काले संन्यास कैलू छन्न है लमन वास्तव में मैं संन्यास जो लिया उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी पागल हो गया था छन्न है लमन मन बिल्कुल पागल हो गया इसलिए संन्यास लिया इसे सीखना चाहिए मां के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है और वास्तव में अगर यदि मां असहाय है उसका कोई और दूसरा बेटा नहीं है और कोई सेवा करने वाला नहीं है और कदाचित उसके पति भी नहीं है पिता भी नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु के पथ चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास पंडित से कि आप जाकर कहिएगा कि नीला चले अछो मुई ताहर अज्ञाते मध्य मध्य असीम तार चरण देखी थे। मैं नीलाचल में रह रहा हूं तो मां की आज्ञा से ही मैं रह रहा हूं। मैं तो वृंदावन भाग रहा था लेकिन मां ने कहा कि यहीं रहो तो नीलाचले आछमई ताहर आज्ञा थे मां की आज्ञा से मैं नीलाचल में हूं और मध्य मध्य में आऊंगा बीच बीच में मैं नवदीप में आऊंगा और मां का चरण कमल देखूंगा। नित्य जाई देखी मुई ताहर चरण स्फूर्ति ज्ञाने तेहो ताहा सत्य नहीं मान। श्रीवास पंडित जी यदि आप कहिएगा मेरे मां से मैं प्रतिदिन जाता हूं नवदीप में मां से मिलने के लिए अरे बात बिल्कुल सत्य है। सची माता नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित और शिवानंद सेन इनके पास चैतन्य महाप्रभु निरंतर प्रकट रहते थे संन्यास लेने के बाद ये कहते हैं नित्य जाई देखी मुई ताहर चरण नित्य में जाता हूं उसका दर्शन करने श्री चरण का दर्शन करता हूं लेकिन मेरी मां ये जानती है कि वो मानसिक स्फुरण हो रहा है चिंतन हो रहा है और उसको सत्य नहीं मानती है कि मैं वास्तव में उसके साथ हूं। एक दिन की घटना आप मेरे मां को कहिएगा एक दिन साल्यन व्यंजन पाच सात साक मोचा खंड मुष्ट पटल निम्ब पात लोम्बू आदा खंड दधि दुग्ध खंड सार सालो ग्रामे समर पिलेन बहुत उपहार। एक दिन की बात है भगवान ने वो तिथि भी बताया कि इस तिथि को इस महीने की इस तिथि को इस दिन को मेरे मां ने बहुत उत्तम चावल पकाया भात बनाया साली अन्नम साल्यन्न साल्य के चावल विशेष को कहते हैं बहुत उत्तम कोटि का तो बहुत अच्छा चावल बनाया और व्यंजन पांच सात और सात पांच व्यंजन भी बनाया सब्जियां भी तो साक मोचा घंट भ्रिष्ट पटोल निम्ब पात कई प्रकार की सब्जी आदि से लेम्बू आधा खंड और नींबू अदरक आदि ये सब अचार भी और दधि दुग्ध खंड सार दही खूब अच्छा सजाव दही दुग्ध खंड सार शालिग्राम में समर्पित बहु उपहार मेरी मां ने भगवान शालिग्राम को ये उपहार समर्पित किया और भगवान को प्रसाद अर्पित करके मेरी मां वो प्रसाद को गोद में लेकर के रोने लगी। प्रसाद लइया कोले करे न क्रंदन निमाइर प्रिय मर ये सब व्यंजन तो मां सची भगवान शालग्राम के प्रसाद को अपने गोद में लेकर तो मां सची कहने लगी गोद में प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निमाइर प्रिय मोर ये सब व्यंजन ये जो भी व्यंजन है इस निमाई को बहुत प्रिय थे। निमाई नहीं कहे था के करे भोजन, मेरी मां क्रंदन करने लगी, रोने लगी, कहने लगी निमाई यहां नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित से अपने मां के विषय में बात कर रहे हैं। एक दिन मेरे मां ने भगवान शालिग्राम को भोग लगाया जिसका वर्णन किया गया ये सब पदार्थ। भोग लगा लिया, भोग को लिया अल्टर से, तो गोद में प्रसाद को रख करके और थाली गोद में रख करके और रोने लगी, कहने लगी कि निमाई र प्रियम और ये सब व्यंजन, मेरे द्वारा पकाए हुए सब व्यंजन निमाई को बहुत प्रिय है। लेकिन बाद में रो रहे इसके कह करके कि निमाई नहीं कहे था के करे भोजन, मोर ध्याने अश्रु जले भरिला नयन। वो कहने लगी कि निमाई इस समय यहां नहीं है, के करे भोजन, कौन खाएगा, मोर ध्याने अश्रु जले भरिला नयन, मेरा ध्यान करके मैं किस प्रकार घर पर मां के पास भोजन करता था ये सब याद करके भरी लनयन, उसके आंखों में आंसू भर गए। तो शीघ्र जाई मुई सब करिनु भक्षण, मैं मां के इस दशा को देख करके मैं तुरंत जा करके वहां भोजन किया। शीघ्र जाई मुई सब करिनु भक्षण, सब कुछ है खा गया जा करके पूरा पूरा। शून्य पात्र देखी अश्रु करी अमार्जन, तो मेरी मां ने बाद में देखा कि सब शून्य पात्र है, सब कुछ खा लिया गया है। जब ये उसने अश्रु मार्जन करके देखा, भले रो रही थी और आंसू को पोंछ कर उसने देखा तो पात्र में कुछ भी बाकी नहीं था, सारा भात दही दूध खंडसार और सारा व्यंजन सब कुछ समाप्त था। शून्य पात्र देखी अश्रु करिया मार्जन, अश्रु मार्जन करके मां सची ने शून्य पात्र देखा तो सोचने लगी के अन्न व्यंजन खाइल, शून्य के ने पात बाल गोपाल की वह खाइल सब भात। मां सची मेरी मां सोचने लगी कि कौन सारा अन्न और व्यंजन खाया, ये भात और सब्जी और दूध दही कौन खाया, शून्य केने पात ये खाली पत्ता कैसे है, केला का ये पत्र सब खाली कैसे है, पत्ता और पात्र बाल गोपाल की वह खाई ला सब भात, क्या बाल गोपाल सब खा गए। एक बार ऐसी घटना हुई घटी थी कि जगन्नाथ मिश्र के घर पर निमाई के घर पर एक ब्राह्मण आए थे, वो बाल गोपाल के भक्त थे, तो वे रंधन किए, वो अच्छा से प्रसाद बना और जब भोग लगाना हुआ भगवान को, ध्यान करने लगे बाल गोपाल का, तो निमाई जो मां सची के गोद में थे छोटे से बच्चे वे आकर के सब खा गए और पंडित जी ध्यान में डूबे हुए थे। भगवान के क्रियावे भोग लगावे, तब तक सचमुच के बाल गोपाल जी आकर सब खा गए। सब नहीं खा गए, वो खाने लगे, खाने लगे। तब तक आंख खोल करके उन्होंने देखा तो लगे चिल्लाने पंडित जी, अरे माई क्या तुम्हारा बच्चा आकर के सारा जूठा कर दिया। जो भोग लगा रहे थे उस समय की बात है, भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु निमाई छोटा सा बच्चा आकर के और खाने लगा। तो फिर अब दूसरी बार बहुत चिंता हुई मां सची को, लगी कहने पंडित जी से कि फिर से बना लीजिए कृपा करके, हमारा बच्चा बहुत नटखट है, आकर के जूठा कर दिया। तो पंडित जी कहने लगे छोड़िए, अब आज भगवान ने भाग्य में लिखा नहीं है कुछ प्रसाद पाने का, अभी जूठा कर दिया हमें, बाल गोपाल को भी कैसे भोग लगाओ। उनको पता नहीं था कि जिसका वो ध्यान धर रहे हैं वही यही बच्चा है सामने। तो फिर बहुत सावधानी से मां सची ने कहा कि इस बार आपके चरण पर गिरती हूं, प्रसाद बनाई, भोग बनाई और भोग लगाकर खाई, अब कैसे भूखा रहेंगे। तो उन्होंने फिर बनाया, लगभग शाम हो गई, दोबारा बनाने में भोग लगाने में शाम हुई, फिर भोग लगाए। तो मां ने सोचा, सची ने सोचा कि ऐसे ही अकस्मात बच्चा चला गया था, जब फिर भोग लगाए बाल गोपाल को तो चैतन्य महाप्रभु बच्चा रूप में पुनः हुए आ गए और खाने लगे। दूसरी बार ये सब चैतन्य भागवत में कथा है। तो दूसरी बार भी आए और जब भोग लगा रहे थे और आंख खोल करके देखते हैं तो वही बच्चा फिर वो हाहाकार करने लगे। अरे बात, अब उन्होंने कह दिया आज ठाकुर जी हमारे भाग्य में भोजन नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, तो भगवान को भोग भी नहीं लगा, ऐसे घर में आया कि बच्चा इतना नटखट जूठा कर दिया। अब मां सची बहुत व्याकुल हुई और बच्चे को एक रूम में रख करके और किवाड़ बंद करके और कही कि अब आप भोग लगाइए, भगवान का बनाइए, इस बार आप कैसे बिना खाए रहेंगे। पंडित जी कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं बनाएंगे। लेकिन तीसरी बार फिर वो किए और मां ने सोचा कि वो सोने का नाटक किए थे चैतन्य महाप्रभु, बच्चा जो नम सो गया है गाढ़ निद्रा में, छोटा सा बच्चा और प्रसाद बनाते बनाते रात हो गई। तो वो सोची कि अब थोड़े आएगा, किवाड़ खोल दिया और सो रहा था बच्चा। फिर पंडित जी भोग लगाने लगे भगवान को, तो 9-10 बज गया था रात को। फिर जब ध्यान धरे बाल गोपाल का, कृष्ण का भोग लगा रहे थे, शालिग्राम में ही वो भावना कर रहे थे, उनके पास शालिग्राम जी थे, बाल गोपाल की भावना कर रहे, तो भोग लगाने लगे, फिर आंख बंद करके भोग लगाने लगे, घंटी बजा रहे थे और तब तक निमाही चग करके फिर आकर पुनः खाने लगे। बहुत आश्चर्य में पंडित हो गए, एक तो भोजन बनाते बनाते दिन भर परेशान थे और मानसिक चिंता होने लगे। मां सची को तो बहुत भारी आश्चर्य हुआ, बाप रे बाप, हे भगवान क्या हो गया। वो तो नहीं जानते थे कि भगवान है ये बच्चा, कैसे इसकी नींद खुल गई। तो पंडित जी बहुत व्याकुल हुए, तो मां सची ने डांटा, बंगला बोल रही थी मां सची, क्यों तुम गया, क्यों गया वहां, तुमको यह सुलाई थी ना, क्यों गया वहां। पंडित जी भगवान को भोग लगा रहे, तो निमाई क्या कहते हैं, वो तो हमको ही बुला रहा है, अमा के डाकी छे वो मुझको बुला रहा है, ध्यान करके और मुझे कहता है आओ खा लो आओ खा लो, तो मैं गया। मां बिल्कुल आश्चर्य, इसको बुला रहा है। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, जो पंडित जी ध्यान धर रहे थे, अब बाद में उन्होंने विचार किया तो निमाई ही कृष्ण के रूप में दिखाई दिया, और बाद में संतोष कर लिए, प्रसाद वो खाए, डायरेक्ट खाए वो बच्चा खाया हो चाहे वही कृष्ण, उनको रियलाइजेशन हो गया, ध्यान में देखने लगे कि यही नरसिंह देव बना था, यही मत्स्यावतार लिया था, ये पूरा था, ये सब कुछ लीला भगवान ने व्यक्त किया उन पंडित जी पर कृपा करके ब्राह्मण, वो कृतार्थ हो गया इस प्रकार निमाई का दर्शन पाकर। तो मां सची भोग लगा करके जब रखी तो रोने लगी, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जान गए, वे कहते हैं कि मैं गया और सारा अन्न व्यंजन खा लिया, शून्य पाता हो गया। तब मां सची सोचने लगी, बाल गोपाल की वह खाई लो सब भात, पहले एक बार खा गया था वो बाल गोपाल, तो कहीं वही तो नहीं एक खा रहा है, ये तो बाल गोपाल को खिलाई और बाद में निमाई को भोजन कराने के लिए रोने लगे। तो सोचती है क्या बाल गोपाल जी सब भात खा गए, किवा मोर कथा मने भ्रम हैया गेल, किवा कौन वस्तु आसी सकल खाइल, जंतु आसी सकल खाइल, किवा मोर कथा मने भ्रम, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि मुझे भ्रम हो गया है कि वास्तव में मैंने पकाया था कि नहीं, भोग लगाया था कि नहीं, या भोग लगाया भी तो पता नहीं कैसे मेरे मन में भ्रम हो रहा है कौन खा गया, कि कोई जंतु आकर के खा गया पाता पर रखा हुआ सारा प्रसाद, क्या जंतु खा गया, जंतु में बिल्ली हो सकता है आकर के खा जाए, कभी कभी ऐसे घर में रखे हुए पदार्थ को बिल्लियां खा जाती है, ये कोई गाय घूमते हुए आई खा गई, या कोई कुत्ता खा गया। सोचने लगी मां कि कौन आकर के खा गया, किवा आमी अन्न पात्र भ्रमे ना बढ़ी लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पात्र में मैं अन्न डाली ही नहीं थी, भात परसी ही नहीं थी, मां सोची सोच रही ये तो चिंती पाक पात्र जाइए देखी लो, तो जाकर के पाक पात्र देखने लगी, आज मैंने अन्न बनाया था कि नहीं देखती है तो रंधन किया हुआ था, रंधन किया हुआ था, बर्तन में परसा हुआ था, तो व्यंजन पूर्ण देखी सकल भाजन है, देखिए संशय है लग किसी चमत्कार मन, भीतर जाकर के देखी तो जितने बर्तन थे भात के और व्यंजन के वे सब पूरा के पूरा थे, उसमें से परसा ही नहीं गया था, ये भगवान ऐसे खाते हैं, पूरा बर्तन था उसमें और इधर का तो पूरा खाली था परसा हुआ, और संशय हो गया, बड़ा चमत्कार हुआ, ईशा ने बोला या पुनर्स्थान ले पाई ला पुनरअपि गोपाल के अन्न समय पीला, तो ईशान जो सेवक था घर में उसको बुला करके मां सची ने सब स्थान लिखवाया और फिर गोपाल को अन्न समर्पित किया, क्योंकि जो पाक हुआ था उसमें अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, मां ने उसी से निकाल निकाल करके परसा था लेकिन पूरा भर गया था, तो उसने सोचा कि कोई कुत्ता बिल्ली आकर के गिरा दिया, तो स्थान लिपवाया जहां परसा था उस स्थान को लिपवा करके, और तब फिर से गोपाल जी को शालिग्राम जी को भोग लगाया मां सची ने, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे उस रहस्य, पुनरअपि गोपाल के अन्न समर्पिल यही मत जबे करें उत्तम व्यंजन रंधन मोरे खवाई ते करे उत्कंठा रोदन। तो इस प्रकार एक दिन की बात बता रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसा ही होता था, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी से कहते हैं कि इस प्रकार जब जब वो उत्तम व्यंजन करती थी, भोजन बनाती थी, तो मुझे खिलाने के लिए रोती, तो मैं उसके बुलाने से उसके प्रेम से तुरंत जाकर के भोजन किया, उस दिन करता हूं तो अंतर में तो उसे सुख होता है लेकिन बाहर से मानती नहीं है, और अभी इसी विजयादशमी को उसने मुझे बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, यही विजयादशमी ते कैनु यही रीत ताहा के पूछी बात, तार कराई है प्रति पूछिए तारे कराई है प्रति आप जाकर के पूछिए कि माँ तुमने दशमी के दिन बहुत खिला दिया था निमाई को बहुत खिला दिया था बहुत स्वादिष्ट पदार्थ था और बहुत खा अब जाकर के पूछिएगा कि और कहिएगा कि वो तो बता रहे थे कि मैं जाकर के खाया माँ का माँ ने मुझे बहुत खिला दिया इस दिन को और क्या क्या बनाया था व्यंजन आदि सब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये पकाया था ये पकाया था ऐसे पकाया था मैं बहुत खा लिया। अब माँ को जाकर के विश्वास दिलाइएगा एते का कहिते प्रभु बिहवल हईला लोक विदाय करते प्रभु धैर्य धरिला। इस प्रकार माँ का स्मरण करके और माँ के प्रेम का स्मरण करके वो बहुत बिहवल हो गए लेकिन चूंकि और भक्तों को विदा करना था इसलिए वो धैर्य धारण किए अपने आवेश को रोके। राघव पंडिते कहन वचन सरस तुम्हार शुद्ध प्रेमे आमी हई तुम्हार बस। राघव पंडित जी को बुला करके उनसे भेंट करने लगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम के बस में हूं और आर द्रव्य रहू सुन नारी केर कथा नारी केर कथा पांच गंडा करी नारी केर बिकाय तथा। चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के सामने कह रहे हैं कि इतना सुंदर भोग लगाता है यह कृष्ण को राघव पंडित अन्य बात तो छोड़िए अन्य जो द्रव्य भोग लगाता है पहले नारियल की कथा सुनिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस समय नारियल खरीदने पर एक नारियल का दाम एक नारिकेल का दाम पांच गंडा होता था। ये गंडा क्या है हैं? जो भी हो कोई दाम आए चार आना क्या क्या चार को नहीं दाम दाम वो है यहाँ पर पांच गंडा करी नारिकेल बिकायता था एक नारियल का दाम पांच गंडा था जो भी है पांच पैसा समझ लीजिए उस समय के लिए बहुत था इतना महंगा बिकता था। लेकिन राघव पंडित खूब उत्तम द्रव्य और शुद्ध तरीके से चाहे कितना महंगा हो वे भगवान को भोग लगाते थे तो उस समय पांच गंडा में एक नारियल मिलता था। बाटी ते कत सत वृक्षे लक्ष लक्ष फल तथापि सुमेन जथा मिष्ट नारिकेल एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पण दस क्रोश हेते अनाय करिया जतन। उनके बाड़ी में उनके बगीचे में सैकड़ों नारियल के फल थे और वृक्ष थे और लाखों फल थे फिर भी जब सुनते थे कि किसी का नारियल बहुत मीठा है उसका पानी बहुत मीठा है तो उसको जा करके लाते थे भले दस कोस जाना पड़े पैदल जाना था बीस माइल दस क्रोस तो दस कोस जाते थे मतलब इतना लंबा लंबा रास्ता जाते थे वो नारियल लाने के लिए। एक तो दाम भी महंगा देना और पैदल जाना और लाना उधर से तो एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पौन वह बीस मील दूरस्थ स्थान से भी नारियल को जत्न पूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए चार पौन चुका दे। भक्तों से कह रहे हैं कि ये राघव पंडित बीसों कोस दूर चले जाते हैं और नारियल को लाते हैं टांग करके और प्रत्येक नारियल के लिए चार पण चुकाते हैं मतलब एक गंडा एक नारियल के लिए प्रतिदिन पांच सात फल छलाइया सुशीतल करते रखे जले डुबाइया और प्रतिदिन लगभग पांच सात नारियल को छील करके उसको ठंडा रखने के लिए शीतल जल में डुबा करके रखते थे और भोगे रह समय पुनः छुली संस्कारी कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करे। जो भोग का समय आता था भगवान कृष्ण को भोग लगाना होता था तो फिर संस्कार करते थे उसका और छीलते थे। तो पानी पानी में डालने के पहले तो उसको छीले ही हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन भोग लगाने के पहले फिर से थोड़ा छीलते थे और नारियल के मुख पर छेद करके और पानी तुरंत निकाल करके ठंडा ताजा कृष्ण को भोग लगाते थे। कृष्ण से ही नारिकेल जल पान करी कहू शून्य फल राखे। कृष्ण से ही नारिकेल जल पान करी कहू शून्य फल राखे कहू जल भरी। कृष्ण इतना पसंद करते थे उसको, उस नारियल के जल को पी करके कभू शून्य फल रखें कभू जल भरी, एकदम पीकर खाली कर देते थे नारियल के सेल को, या कभी कभी भरा भी कर देते थे, पीते थे लेकिन भरा भी छोड़ देते थे, भर देते थे कभी या कभी कभी खाली रखते। कभू शून्य फल रखें, फल को कभी शून्य रखते थे, कभू जल भरी। जल शून्य फल देखी पंडित सहर्षित, फल भांगी ससे करे सत्तात्र पूरी। जब नारियल में कोई पानी नहीं रहता था, सब पी गए भगवान, तो ये देख करके राघव पंडित को बहुत हर्ष होता था और वो बाद में क्या करते थे, उस शून्य पात्र को नारियल को लेकर के और उसका सस से निकालते थे। सस से मतलब गिरी, जो नारियल के भीतर रहता है ना माखन, उसको निकाल करके सतपात्र में बहुत अच्छे पात्र में पूरित करके रखते थे। सस से समर्पण करी बाहिर ध्यान, सस खाया कृष्ण करे शून्य भोजन। सस से समर्पण करके और फिर राघव पंडित आकर बाहर ध्यान करते थे भगवान खा रहे हैं, तो सचमुच के कृष्ण उसको खा करके बर्तन को शून्य कर देते थे। गणेश जी एक बार दूध पिए थे, ये तो कृष्ण रोज भक्तों का लेते रहते हैं। राघव पंडित का वो जल भी पीते हैं नारियल का और सस्य उसका गिरी भी खा जाते। और पहले ही कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि और बात कितना द्रव्य और द्रव्य कितना अर्पित करते थे, कितना उत्तम उत्तम और कितना शुद्ध तरीके से, तो उसमें एक उन्होंने नारियल का उदाहरण दिया है। अन्य बात छोड़िए, नारियल को कितना दूर से लाना ढो करके कैसे कैसे महंगा फिर भी भोग लगाते, जो भी अच्छा चीज जान जाते थे कि स्वादिष्ट है शुद्ध है पवित्र है अच्छा है, तो उसको वो खरीद खरीद कर कृष्ण को भोग लगाते। कभी सस्य खाया पुनः पात्र भरे सांस, कभी कभी कृष्ण उस नारियल के गिरी को उसके माखन को खा करके और पात्र को फिर भर देते थे जैसा रखा रहता था। श्रद्धा बढ़े पंडित तेरे प्रेम सिंधु भाष, पंडित की श्रद्धा बढ़ रही थी और भोग लगाने में। एक दिन फल दस संस्कार करिया भोग लगाई ते सेवक आई लैया। एक दिन उनका सेवक कहीं से लाया नारियल, इनके भेजने से दस नारियल का फल बहुत उत्तम कहीं से मंगाए थे, तो सेवक लेकर के आया। भोग लगाई थे, भोग लगाते समय ही लगाने से पहले लेकर के आया, बहुत देर हो गई थी, ये प्रतीक्षा में थे कि हमारे सेवक वो नारियल लाएगा तो उसका भोग लगाएंगे। नारियल का भोग लगाने का मतलब वो जल देना भगवान को पीने के लिए और उसका गिरी खिलाना। अवसर नहीं है विलंब है, बेचारे को समय नहीं मिला या ट्रैफिक जाम हुआ होगा जो भी, मतलब किसी तरह से वो लेट हो गया विलंब हो गया। फल पात्र हाथे सेवक द्वारे तर रहिला, फल पात्र हाथे सेवक द्वारे तर रहिला। तो वो फल का पात्र मतलब टोकरी लेकर के वह सेवक द्वार पर खड़ा रहा। द्वारे रहू पर भीते हाथ तेहो हाथ दिल सही हाथे फल छुल पनी तो देख ल। तो हुआ क्या कि वो भीत पर मंदिर के द्वार के भीत पर अपना हाथ ऐसे रख दिया था खड़ा होने में और उसी हाथ से फिर फल को छू दिया, छिले हुए फल को छू दिया। उसे संस्कार करके लाया था छील करके लाया था कि मैं भोग लगाना, तो आप केवल छेद करके और पानी डाल करके देना था, संस्कार कर चुका था। तो भीत पर उसका हाथ ऐसे अवलंब दे दिया था और फिर उसी हाथ से छू दिया था, देखा पंडित ने, पंडित तो देखिला, पंडित कहे द्वारे लोग करे गता गति, तार पद धूली उड़े लागे ऊपर भी। जानते हो रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं और उनके पद की धूली दीवाल पर पड़ जाती है, तो उसी हाथ से, इस हाथ से तुम दीवाल को पकड़े और उसी को फल को छू दिए तो ये भोग नहीं लगाया जा सकता। सही भीते हाथ दिया फल पर शिला, कृष्ण योग्य न है फल अपवित्र है ला। ये कृष्ण के खाने के योग्य नहीं, जबकि अभी जल भीतर था लेकिन संस्कार किए हुए छिले हुए नारियल को तुमने छू लिया तो ये कृष्ण को भोग लगाने योग्य नहीं है। अभी दीवाल पर लोगों के चरण रज पड़ रहे हैं, उस पर तुमने हाथ रख दिया और उससे इसको छू दिया। बहुत पवित्र भोग लगाते थे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े कुछ भी, और माने तो अपवित्र हो गया। यही बलि फल फैले प्राचीर लंघिया, तो प्राचीर से आकर के या भीतर से ही, प्राचीर मतलब चहरदीवारी से फल को फेंक दिए, दसों फल फेंक दिए। ऐसे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिया, ऐसे पवित्र सेवा से राघव पंडित ने जगत को विजय जीत लिया। यही मत कला आम्र नारंग काटाल बाह्य, जहां जहां दूर ग्रामे सुनी बारे सुनिया से भाव, बहुमूल्य दिया नि करिया जतन, पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। इस प्रकार से जैसे नारियल की कथा कही गई, इसी तरह से कला, केला, आम्र, नारंग, केला, आम, नारंगी, कोटाल, कटहल, कटहल कटहल को खा देन, तो केला, आम, नारंगी और कटहल, जहां जहां दूर ग्रामे सुनी अच्छे भाल, जहां जहां सुनते थे कि हाँ बहुत अच्छा आम है, मीठा आम है और नारंगी कटहल, तो बहुमूल्य दिया आनी करिया जतन, तो बहुत ज्यादा मूल्य दे दे करके, तो जब वो मांगते थे तो उतना मूल्य दे करके जतन करके लाते थे, पवित्र संस्कार करी करे निवेदन, पवित्र संस्कार करते और निवेदन करते। कभी कभी तो लोग आजकल लाते हैं फल तो धोते भी नहीं है, बस भगवान को भोग लगा, सोचना चाहिए कितना धूल गर्दा पड़ा हुआ है। उस समय तो पैदल लोग चलते थे तो उनके पग से धूली पड़ी है भीत पर, तो उसको उस हाथ से छू दिया धूली को और फिर फल को तो फेंक दिया। ये सीखना चाहिए, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है तो बहुत पवित्र करके, मेहनत करके सबसे उत्तम चीज भोग लगाना चाहिए, भले पैसा लग रहा हो, बाजार में सबसे बेस्ट जो फल है वही लाना चाहिए। बेस्ट का मतलब देखने में ही नहीं, ये तो पहले किसी न किसी प्रकार से चख करके व्यक्ति देख लिया है कि ये बहुत मधुर है, तो भगवान को लाना चाहिए, भले ये कहीं लावे वो ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट लाना चाहिए। और साधारण हो या उसमें ठीक नहीं हो, बासी हो, तो पूरा बोरा भर करके भी लाना बेकार है। यदि वास्तव में भगवान से प्रेम है तो सबसे बेस्ट चीज उनको देना चाहिए, सबसे अच्छा। तो इस प्रकार राघव पंडित भगवान को भोग लगाते थे, आम, नारंगी, कटहल, ये सब फल हैं जिसे भगवान खाते हैं, बहुत अच्छा से खाते हैं। और इसे फेव ये पुल, ये सब बाहरी फल है, तो जहां जो सुलभ हो उसी का भोग लगाना चाहिए, कहने का आशय ये है। इस क्षेत्र में तो आम, केला, नारंगी और कटहल ये सब प्राप्त है, जिस क्षेत्र में जो फल मिल रहा हो उसका भोग लगाना चाहिए। और मान लीजिए कोई कोई फल बहुत अच्छा भी मिलता है दूर देश से, इंपोर्ट करके कुछ लोग मंगाते हैं, लेकिन आते आते बासी रहता है, एक तो तोड़ा जाता है कच्चा, पकाया जाता है आर्टिफिशियल ढंग से, और पैसा भी बिना मतलब के, कितने अशुद्ध हाथों में आता है वो, क्यों भोग लगाएंगे? अपने क्षेत्र में जो मिल रहा हो उसी को उसी में से चुन करके अच्छा सड़ा गला न हो, ताजा हो, मीठा हो, जैसे मां सेवरी ने भगवान को भोग लगाया। प्रेमक के मड़ैया में राम रघुरैया बैरिया खाई ले, कुछ ऐसा पद है। सेवरी माता का वो कुटीर क्या था, प्रेम के मड़ैया में राम रघुरैया बैरिया खाई ले, बेर का फल खाए भगवान, बिल्कुल जूठा फल खाए। उसका तो मातृभाव था भगवान के प्रति, तो सेवरी मां भगवान राम को जूठा बेर खाने को दी और उसको भगवान राम बहुत प्रेम से भोग लगा रहे थे, खूब खा रहे, बहुत सराहना करके। यहां तक लक्ष्मण इसे कहते हैं कि मैं बहुत भोजन किया हूं अपने ससुराल जनकपुर में, विश्वामित्र जी के यहां यज्ञ में भी भोजन किया, भक्त लोग भी मुझे रोज भोजन कराते रहते हैं, मंदिर में इधर उधर खाता हूं, लेकिन जो स्वाद मां तुम्हारे बेर में है वो किसी भी भोजन में नहीं मिले। तो जूठा फल खिला रहे थे उसको उत्तम फल जानकर। तो इस प्रकार भगवान को उत्तम द्रव्य भोग लगाना चाहिए। पंडित कहे द्वारे लोग, इस बात कह चुके, यह पवित्र हो गया इसको भोग नहीं लगाना, ऐसा कह करके प्राचीर से उस फल को फेंक दिए। यही मत कला आम्र नारंग नारंग कटा कोटाल, जहां जहां दूर ग्रामे सुनिया से भाल, बहुमूल्य दिया नि करिया जतन, पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। ये भगवान को भोग लगाने में कुछ परिश्रम पड़ रहा हो तो आनंद से स्वीकार करना चाहिए उसको। ऐसे स्थान को बढ़िया से संस्कार करना, भगवान के श्री विग्रह को धोना या पोछना, श्रृंगार करना, और भोग लगाने के लिए खूब स्नेह से भोग लगाना चाहिए। कोई भी सड़ा हुआ अंश न रह जाए फल में, या जो प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें कोई कंकड़ न रह जाए। एक बार एक कहा जा रहा था कि भाई भगवान का प्रसाद जो भी मिले खा लेना चाहिए, तो एक भक्त पूछा कि अगर उसमें कंकड़ हो तो वही खा जाना चाहिए। तो कंकड़ क्यों रहेगा, चावल एक एक दाना चुन करके ऐसे देख करके पकाना चाहिए, क्यों कंकड़ आएगा। यदि भगवान से प्रेम है तो कंकड़ आने नहीं देगा, और कदाचित भूल से कोई कंकड़ रह गया हो तो उसको भी प्रसाद समझकर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कंकड़ को खाए नहीं होंगे। वो तो बहुत अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो उसको छोड़ करके वो खाए होंगे, तो कंकड़ खाने की जरूरत नहीं है। परंतु इसका भाव यह आशय यह है कि भगवान को कंकड़ भोग लगना ही नहीं चाहिए, बहुत उत्तम चीज बहुत ढंग से पकाना चाहिए। इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस सेवा से उसने जगत को जीत लिया, कोई जीत सकता है। यही मत व्यंजन एवं साक मूल फल, यही मत छीड़ा छीड़ा हुडुम संदेश सकत। इसी प्रकार से वे इसी ढंग से सब्जी का भोग लगाते थे, साग का मूल फल और चिवड़ा, चूड़ा भी भोग लगाते थे, और हुडुम चिवड़ा हुडुम कहते चूर्णित चावल। चूर्णित चावल का मतलब क्या है, टूटा हुआ चावल, चिड़ा को भूंज कर। अच्छा अच्छा, संदेश ये सब। यही मतलब पीठा पाना छीर उदन परम पवित्र और करे सर्वोत्तम। इस तरह से कोई भी चीज बहुत पवित्र और उत्तम ढंग से भोग लगाते थे। कस्मदी आचार आदि अनेक प्रकार, गंध वस्त्र अलंकार सर्व द्रव्य सार। इसी प्रकार से कस्मदी जैसे आचार, कस्मदी क्या चीज है, कोई बंगला शब्द, और आचार
सब उत्तम प्रकार के, और गंध, वस्त्र, अलंकार, सर्व द्रव्य सार सबसे श्रेष्ठ चीज लाते थे किसी में। यही मतलब प्रेमर सेवा करे अनुपम, जहां देखी सर्व लोग के जुड़ाए नयन। इस प्रकार से राघव पंडित भगवान को भोग लगाते हैं, जिसको देख करके सब लोगों का नयन जुड़ाया जाता है। इतर बलि राघव रे कैला आलिंगन है, यही मत समान नील सर्व भक्त का। इस प्रकार राघव पंडित को भगवान ने आलिंगन में लिया, सबका सम्मान किया। सेवानंद सेन कहे करिया सम्मान, वासुदेव दत्त तुम्हें करिया सम्मान। फिर सेवानंद सेन को उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि आप वासुदेव दत्त का संभाल कीजिएगा। इनकी दशा ठीक नहीं थे वासुदेव दत्त की, गरीबी में चल रहे थे, कर्जे में चल रहे थे। शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनका समाधान कीजिएगा, जो भी खर्च लगे जैसे भी आप संभालिएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से व्यवहारिक बातें भी भक्तों को सुझाते थे। एक भक्त को कहते थे कि दूसरे की मदद कीजिएगा, परस्पर सहयोग रखिएगा। तो आगे हम वर्णन करेंगे, कई प्रकार से भक्तों से मिल रहे हैं, समय काफी हो गया है। हरे कृष्ण।